या तो दोनों के भाई हो, चार वर्ष तक नंद प्रेमी थे, नंद बाबा के घर गए थे और जो कुछ उन्होंने खाया किया है उसमें से उसको बनता है कि नंद बाबा की गैया कराया जो बड़े कष्ट से, उसका भी तो मन या कुछ लगना चाहिए। खैर वो दे और न दे कोई बात नहीं, इसकी पाई पाई गर्दनी से इसका अकाउंट किया जाए, हिसाब किताब किया जाए और जड़ी कुछ का एक बचता है इसका आनंद होगा बचवानी होगा जो उन्होंने किराया दिलाया है तो उसका दो गुण दे दिया जाए, क्योंकि सागरता से देने की कोई भी जरूरत नहीं, दो गुण दिया जाए शासन में दिया जाए। कहते हैं गोप राज को गोप राज माने नंद बाबा को है, अरे उनके घर में क्या है केवल तो गायों का छाछ है दूध है, बस यही तो इसका काम कितना होगा और केवल 11 वर्ष तक और वो भी किताब पाठ करके और
कराया
जब तक से भैया कराया उसका भी तो कोई मन नहीं आ गया वेतन है तो इसको निकाल कर क्या बचेगा, कोई कोई हम विचार कराएंगे गर्व से, वो महान ज्योतिषी है एक पैसे की जरूरत नहीं होगी, हमारे पति का एक पैसा भी नहीं जाएगा भीतर से ये हम तो हिसाब करके सब निकाल देंगे और गुणवत्ता कितना खर्च गाय का तो सुन दही बहे गए वहाँ नंद गोकुल में उसका कोई मिल जाएगा, इसलिए मैं स्वयं शपथ करके कह रही हूँ हम अपने पति से जो किताब लिखेगा उसका दुनिया मैं करें और जरूर नंद को दिखा इसमें एक बात आएगी कृष्ण और बलदेव जी 11 वर्ष तक पहले उसने लिखा है, ये जन्म से लेकर के दस वर्ष कृष्ण 8 महीने मार रहे तो 4-5 वर्ष तो वो या 3 वर्ष तक तो मर्यादा भी किया तो वो भी सामने नहीं आना चाहिए नहीं जाने और इसके बाद में बच्चा क्या है 11 वर्ष में से 3 व्यक्ति चला जाए तो 9 वर्ष बचता तो 9 वर्ष में वह 8 वर्ष और 8 वर्ष में मान लिया कि रोज 1-1 किलो 2-2 किलो मिले तो महीने में कितना ले और उस समय गुणवत्ता कम कितना होगा बहुत सस्ता नहीं के बराबर। ये सुनते हैं कि नंदगांव में एक खास दूध है उसमें दही पकने के बाद में खाद को कोई पीने वाला नहीं तो मक्खन ही खाना है मक्खन ही खाना है खाएगा कि वो खाद का पूरी होते देते थे और खाद जमा रहा गाय भैया भी मानते नहीं पीते थे इतना खाद कर इसमें कोई चीज मिल रही है। दूसरी बात कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण 9 वर्ष का के प्रारंभ तक तथा 15 वर्ष की अवस्था तक रहे इसमें भी सनातन गोस्वामी जी का कोई इसमें असामंजस्य की बात नहीं है क्यों भागवत में तो देखा जाता है एकादश पर एकादश पर क्यों लिखा गया किशोर काल तक होना है। किशोर काल कितनी उम्र की होती है? 15 वर्ष तक उसकी स्थिति है किशोर। उसमें भी एक चढ़ता हुआ किशोर है, नौ किशोर वयसंधि का है, एक मध्यम वयसंधि का और एक व्यक्त है। तो उस समय व्यक्त 15 वर्ष का किशोर माना जाता है, कृष्ण के लिए, गोपों के लिए, और किशोरों के लिए 12-13 वर्ष 14 वर्ष का। तो उसने किसका निवास किया, इसका सामंजस्य क्या होगा, उसके लिए कारण है कि जिस समय अपूर्व राम और कृष्ण को ले जाने के लिए गोकुल में आए, उस समय उन्होंने कृष्ण को किशोर रूप में दर्शन किया था। किशोर ने दिया था, दर्शन दिया था। और जब कृष्ण कंस को कंस के चारों मूर्ति के पहलवानों से जबकि लड़ने के लिए गए, तो मथुरा की योगी ने उसे देखकर के क्या कहा था, काम देव सत्ता मुक्तिमान। इसे उस समय काफी किशोर परिणत किया गया। वैसे तो कृष्ण ज्यादातर लगाते हैं इस जगत के धारा किशोर रूपी ही रहते हैं, कभी भी वो युवावस्था में नहीं होते, उनके भूखे और दाइया नहीं होते, कभी नहीं होते। ये भगवत्ता का एक विशेष लक्षण है, सब भगवान के लिए, इस कृष्ण के लिए विशेष लक्षण। रामचंद्र जी को भी ऐसा देखा जाता है, 11,000 वर्ष की आयु में भी वृद्ध नहीं हुए, और कृष्ण तो 100 वर्ष की उम्र में भी एकदम युवक किशोरों को भी देखते हैं। उस समय कैसरों का जगत का वर्णन भी श्रीमद्भागवत में आता है, और फिर जो अभी पदार्थ नहीं किया जिस समय की कृष्ण ने कंस के अंगों को मारा, और कैसे उन्होंने से एकादश मत भी समझ में आता है कि जो कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसे मक्खन और दूध मलाई खा करके ऐसे जाते हैं मानस मंत्र की तरफ बढ़ते हुए। इसलिए रामकृष्ण कंस पद के पश्चात जगरों को भी धारण किया, और बहुत रंगभूमि में वसुदेव देव जी को प्रणाम किया और बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं। वो ऐश्वर्य को देख करके ये जितना ये भगवान है सही भगवान है, इसलिए पुत्र भाव समाप्त हो गया और आए ये भगवान है। तो वो कहते हैं हम लोग आपके पुत्र हैं, हमारे बाल्य और वन और किशोर उम्र की लीलाओं को आपने अनुभव नहीं किया, कुछ को भोग नहीं किया आप लोग, उस समय तो मैं धंधा बन गया था पुत्र होने पर भी, मैं पुत्र था किंतु आप लोगों ने वो भाव और वन कहीं तो अवस्था की लीलाओं से आप वंचित रहे। क्योंकि मथुरा में आते ही कृष्ण ने परम ऐश्वर्य प्रकट किया, और वहां मथुरा भी सो गए, जरासंध के पीछे बातचीत किया उन्होंने, इसलिए ऐश्वर्य भावना। और कभी कभी संस्कृत प्रदा पत्र भी धारण किया। यहां भी वैसा ही बालक रहते ही क्या कृष्ण सभी चीजों में मदद उसके लक्षण सब बदल गए। उसके उदाहरण के लिए जमीन नहीं है कि वह साधारण आदमी सुनने के योग्य नहीं इसलिए कृष्ण का नित्य की जो विचार करने पर भी वह नित्य की जो अवस्था में ही रहते हैं अथवा कई दो का पंचदश वर्ष भगवान गोकुल से मथुरा को आए ऐसा भी किसी किसी ने कहा है ये भी ठीक है सनातन मथुरा में क्योंकि पंचदश वर्ष तक उसको भी एक अवस्था रहती है और यही श्रृंगार रस का समय है। इसके बाद मथुरा आने पर श्रृंगार रस उनका समाप्त हो जाता है वो नहीं रहता है इसलिए उसने जो कहा परमावती में वो ठीक ही था वो न्याय संगत है और ऐसे माता जी कृष्ण ने परमावती की बात सुन करके भी उस पर कोई ध्यान नहीं मान सुनाएंगे इसीलिए ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उद्धव जी से पूछा किस प्रकार से पूछा मानो कुछ जानते हैं आप ज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं जानते इसका भी कोई कारण विशेष है वो कारण ये है मैं तो बड़े में जाना चाहता हूं किंतु यहां माता जी हैं और पिताजी और मथुरा के लोग हैं वो दुखी होंगे इसलिए उत्साह से भी पालेगा कि ब्रज में आपका जाना ही उचित है उसके बिना वो मर जाएंगे तब फिर उसे कोई नहीं हो ऐसी बात से कृष्ण ने उत्साह जी से कहा तुम तो बोलो वो एक बार तक सतत अपना जी प्राय अभी भगवान आप ब्रज में गए काफी दिन वहां रहे ब्रजवासियों से जुड़े मिले नंद बाबा के गोपियों से और इसके बाद में उनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या चाहते हैं और आप उन सब का विचार करके हमें बताइए मैं भी ध्यान कैसे वो प्रसन्न हो क्योंकि देवकी जी ने भी ऐसा कहा था कि तुम उनको जो देना है तो दे दो इसलिए पूछा कि ज्योति मैया का भी अभिप्राय है तो मैं अपने मन से करूंगा तो सबसे गड़बड़ हो जाएगा इसलिए उनका ही करना है और तब भी मैं कहूंगा कि जो हमारा मंत्री और पवित्र है इसमें जैसा अभाव है जो हमारी पास में नहीं आए वो सब आएगा इसे सुनकर के उद्धव जी हृदय में बड़े दुखी थे और उनके कृष्ण की बात सुनकर और क्षण भर तक लंबे सिद्ध निष्पाल को सोचकर और फिर बड़े अनुसार के साथ में दुख करते थे क्यों इसलिए उद्धव प्रेम में जीवन ब्रज में गए गोपियों की दशा देखी गायों की दशा देखी सारे ब्रजों बेकार एकदम सुना और बच्चे गायन है कि मर गई गोपियां भी कुछ है कि नहीं जब से लौट है इसलिए उन सोचने से भी जगी कृष्ण हमने भी प्रतिज्ञा की कि मैं चार कृष्ण को लेकर नहीं जाऊंगा और जब यहां आया कृष्ण दुखी तो हुए किंतु गए और फिर बड़ी बातें हमसे ये पूछ रहे हैं मतलब क्या भगवान के विजय को जानते हैं उसके इस विषय को जानते हैं कि ब्रजवासियों का क्या है, वो क्या चाहते हैं, राजा चाहते हैं या ब्रजवासी लोग चाहते हैं, नंद बाबा इत्यादि राज्य चाहते हैं, नहीं वो क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारा बेटा ब्रज में होगा, किसी प्रकार से हमारे प्राण बंधन कृष्ण हो सकता है, इसके अपेक्षा और कुछ भी नहीं, वो लोग नहीं चाहते हैं, कृष्ण तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी उसका और उसका भी इसको समझ करके किंतु कृष्ण करके सतुराई से बातें करते हैं, है किसर से नहीं जाते मेरे गया मेरे गए विद्यालयों को शांत करना नहीं होगी, किसी को भी नहीं शांत करना होगी, आप सभी गायों और गए बच्चों को भी नहीं इसलिए अज्ञान की बातें क्यों पूछ रहे हैं, ज्ञानी की इच्छा नहीं है सर, वो चाल बहाना कर रहे हैं, इसलिए गोपियों के प्रेम से जीवन और उनके भाव को समझ करके कुछ विचार किया जाए कि कृष्ण क्यों बोले, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, और फिर समझ करके बड़े ही काम करते हुए कुछ प्रकाश करते हुए सब कुछ का ये प्रकार है। भगवान सर्वज्ञ है, चाहे वो ब्रज में हो चाहे जहां भी हो, दो बातें उनके साथ में रहती है, वे मथुरा का पालन करते हैं, यदि उनकी अर्पण बड़ी शक्तियां उसी में रहती है, माधुरी के द्वारा वह स्थापित रहती है, किंतु समय समय पर वो प्रकटित हो जाती है, सभ्यता और मूर्खता दोनों बातें एक ही साथ में सर्वज्ञ है, कोई भी भक्त मथुरा वृंदावन में रास कर रहे हैं और कोई भक्त जिनको कुछ आता है, यदि द्रौपदी ने कर्ण सत्य पुकार तो वो पुकार उनकी जानने जाएगी कि नहीं जाएगी, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है और कुछ नहीं जानता हूँ मन भाई और प्रयास परम दयालु तीनों में ही भगवान उनकी उन बातों को सुन करके बड़ी दुखित हुए और सुचन होने की जो वंचना मात्र है केवल ये वंचना का जाने की इच्छा नहीं है, इससे ऐसा ही मैं तो तुमको पता चलना चाहिए जिसे दिन मैं आया वहां से घर से लौटा उसको बता दूंगी तो उसको चलना चाहिए तात्पर्य क्या प्रवंचना कर रहे आपिक प्रियजन जो ब्रिज के लोग हैं नंद बाबा जो बोला तथा वो शक्तियां उनके प्रति कृष्ण का ऐसा व्यवहार रूप ऐसा विस्तृत व्यवहार वो विचार करके विस्तृत हो हमें सोचा जाएगा कि शरीर प्रवृत्त हो जाएगा कि नहीं ऐसा क्यों हुआ ब्रजवासियों के संग से अपुंता नहीं हुआ और लोगों का नहीं हुआ उनको इनका क्यों हुआ उसको वृद्धा भाव आएगा ही उनके प्रति सहानुभूति आएगी क्योंकि उन्होंने वंदना की आशा महो वंदे नंद भजे श्री नाम भाव रेणु मत जाति अजाति ही आपका काम है इत्यादि को ये बताया उनकी महिमा इसलिए उसको चिंतन करना इसलिए ये ऐसे बनवासी जो उनके लिए बड़े सार्थक जीवन हो रहे हैं और किसी को वंचना कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हाँ किसी कृष्ण के भीतर में जो भावना है मेरे जाने से भी उसको सांत्वना नहीं होगी शायद ये बात को नहीं समझे इसलिए क्या करने लगे उद्धव ना राजन करता विभूत नित्य वस्तु सके भवन भवता न काम कामयन से अंजा सिंह किंचित अमुक्त प्राप्य 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 दे भवंतम गुणन पापा बलवान और गोपियां अपने कुछ भी नहीं चाहती कुछ भी उनका प्रेम कैसा है उन्हें स्वाद अन्ना विलासता सुन क्योंकि ये चरम सीमा तक है गोपियां मुझे बढ़कर के और नहीं और लोगों का कुछ हो सकता है उन गोपियों का एक दम अन्ना विलासता है और निरंतर कृष्ण की सेवा में तन मन वचन से उठने और वहां तक पार पार कर सकते वे कोई विभूति राज्य अथवा पारिजात इत्यादि पद के वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते वार्तावासी चाहते हैं कि एक कृष्ण पारिजात पद पर आए तो सत्यना के और स्वर्ग का वो राजसभा वहां पर गया उन लोगों के को कहीं भी कोई कामना वासना नहीं है आपके आपके विजय के अतिरिक्त अर्थात आपके ब्रज में ज्ञानी के अतिरिक्त कोई भी लौकिक और पारलौकिक कोई भी भोग द्रव्य की उनकी कामना कदापि नहीं है इसलिए यहां तक कि गोपियां नाती में आखिरी सोलह पार करना यदि कृष्ण को ब्रज में रहकर भगवान बनाकर वो द्वारका वासी मथुरा वासियों के साथ में रहना उनको पसंद है उसमें उनका जी चाहता है वही रहे यहाँ पर लौट सकते हैं के जीवन से हम मस्तक बना करके मर जाएंगे तो अभी यहां को कुछ चिंता नहीं ना बनी ना बनी सभी बाकी मोरे जल्दी धीरे दुख रात बोले वहां सुख तेरी सुख वो सुख बन जाए यदि कृष्ण हमारे नजर को पीस दे दुख को दे हमारे सामने अन्य बाधाओं से वो मिले हैं वहां लंबा पूरा चाहिए नहीं हो कभी मरे दूसरा इसलिए कभी उसके अंदर में ऐसी कोई भावना नहीं है इसलिए कृष्ण यदि मथुरा में और द्वारका में चुकी ना तो चुकी रहे हम लोग दुख से बच जाए तो वही पता जाते समय मथुरा लौटते समय उन्होंने पूछा श्रीमती जी से उन्होंने तो आपके लिए संदेश दिया था उनको आपका कोई संदेश कृष्ण के प्रति है तो वो बोली नहीं फिर दूसरी बात ऐसी फिर बात हो कि आपका कोई संदेश हो ये कृष्ण शीघ्र यहाँ पर लौट आएंगे तो मैं उनसे कहूँ तो मैं कभी कहूँ करना मत बताना यदि बताना कि आपके पिता ने गोपियां धर्म प्राप्त करके मर रही है उनका जो है मक्खन से भी कोमल है हाथ में लेकिन मक्खन निकल जाता है उसे भी अधिक कृष्णता है इसलिए कृष्ण हम लोगों का कुछ नहीं जान सकेंगे हो सकता है कृष्ण करी को छोड़ दे इसे मक्खन वो मार चुकी है हम लोग भी उनको भूल चुकी है उनको आने की जरूरत नहीं यदि इस तरह से परिपाटी कृष्ण के व्यतिरिक्त आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त और कोई भी राजनीतिक विभूति इत्यादि की कोई भी कामना नहीं करते हैं आप ध्यान से सुनिए मैं निवेदन करता हूं और सुनने के बाद में स्वयं विचार करें और विचार करके जो कर सकते हैं आप वही करें आप मेरी बात तो सुनिए यदि अच्छी लगे तो करेंगे और अच्छी ना लगे तो मत करिए कृष्ण को आपने जब प्रभु को मारा, नंद बाबा राम के बाद मथुरा नगरी के बाद में जमुना के तट पर गाड़ी के साथ में प्रतीक्षा कर रहे कृष्ण बलदेव थे। उस समय पर गुरु नहीं आए, बोले देखो बलदेव तो हमारा पुत्र है, यह बात ठीक है किंतु बहुत बल्कि किया वस्त्रों में सारे पुत्र मारे गए हैं, जो खुशी है तुम यहाँ नहीं रहेगा बस देव और देवी दोनों बचे। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको उस दिन मार दूँ, बोलते बोली कि असंभव है, मैं कृष्ण को छोड़कर के एक जगह से भी कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, इसे आत्मा करके कृष्ण के साथ में हम नहीं देते। कृष्ण बोले आपके बंधु को बसदेव व्यक्ति है, मैं जानता हूं कि बसदेव जी जाएंगे तो ये मर जाएंगे और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए बसदेव का